एक बार मुझे कवि सम्मेलन में आगरा जाना हुआ। आगरा उतरने के बाद सोचा कि लगे हाथ ताजमहल देख लूं। एक रिक्शे वाले से मुलाकात की। रिक्शे वाले से कहा कि ताजमहल का कितना लोगे? बोला बेचना ही नहीं है। मैंने कहा बड़ा अजीब आदमी है, मैं जाने का पूछ रहा हूँ, ये ताजमहल का रेट बता रहा है। मुझे गुस्सा आया, मैं बस में बैठ गया। बस में मेरे बगल में एक आदमी बैठा, उसने मेरे जेब से बीड़ी निकाली, फिर माचिस भी निकाला, बीड़ी जलाई, उसका धुआं मेरे मुंह पर फूकने लगा। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने कहा भाई साहब, आपने मेरे जेब से बीड़ी निकाली, मैंने कुछ नहीं बोला। आपने माचिस निकाली, मैंने कुछ नहीं बोला। आप बीड़ी जलाए, मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन उसका धुआं भी मेरे मुंह पर फूंक रहे हो, ये सब आप बिना पूछे क्यों कर रहे हो? उसने कहा मैं अजनबियों से बात नहीं किया करता।
क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया भाई।
लेकिन कभी कभार अजनबी व्यक्ति को देख करके कोई कोई कविता पैदा हो जाती है। ऐसे ही एक ट्रैफिक हवलदार को देखकर मैंने एक कविता लिखी, वह कविता आपके सामने रखने जा रहा हूँ। विश्वास रखता हूँ कि आपको यह कविता बहुत पसंद आएगी। कविता का नाम है ट्रैफिक हवलदार की सुहाग रात। सुहाग रात में हवलदार की पत्नी बैठी थी सज संवर कर, वह भी पहुँचा सीटी मारते, बगल में बैठा संभल कर। वह थोड़ी देर तक सीटी मारते रहा और कुछ नहीं किया, तो हैरान होकर पत्नी ने स्वयं अपना घूंघट उठा लिया और बोली क्यों जी, आपका पूरा शरीर क्यों हिल रहा है? वह बोला क्या करूं, आगे जाने का सिग्नल ही नहीं मिल रहा है। तुम्हें देख सिर्फ मेरी लाल बत्ती ही जल रही है, ट्रैफिक होता तो संभाल लेता, यहाँ कुछ नहीं चल रही है। पत्नी ने कहा छोड़िए यह सब, आप मेरे पास आइए। वह बहाना बनाते हुए बोला शादी का लाइसेंस दिखाइए। अच्छा तो तुम राम प्यारे की बेटी काजल हो, ये तो ठीक है, ये बताओ तुम कब की मॉडल हो? और सही सही बताना, और सही सही बताना, तुम वन हैंड हो या सेकंड हैंड हो? बीच में रिपेयरिंग तो नहीं हुई है? वो बोली तुम कैसे हस्बैंड हो, आज के दिन कैसी बहकी बहकी बात कर रहे हो, क्या तुमने पी रखी शराब है? तब वह सकुचा कर बोला तुम्हारा रिपोर्ट तो ठीक है, लेकिन मेरा हर पार्ट खराब है। यह सुन पत्नी ने कहा रोटी की तलाश में आज हम इतने दीवाने हो गए हैं कि काम काज की भीड़ में रिश्ते नाते खो गए हैं, कि काम काज की भीड़ में रिश्ते नाते खो गए। अच्छा नाता मियां बीवी का होता है, मैं अपने बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन एक बार उसका प्यार जानने के लिए मैंने उससे पूछा कि अगर मैं तुम्हें एक मौका दूँ अपने जीवन में सबसे अच्छा काम करने का तो तुम क्या करोगी? उसने कहा तुम्हें छोड़ के चली जाऊँगी। परंतु आज सास बहू के रिश्ते को लेकर के मैं आपके सामने कविता रखने जा रहा हूँ, जिस कविता का नाम है क्योंकि सास भी कभी बहू थी।
क्या बात है भाई।
एक दिन हमारे बगल वाले चाची की लड़के की हुई शादी, बहू घर में आई, कुछ दिन ठीक ठाक चला, पर परंपरा के अनुसार सास ने बहू पर धाक जमाई, हर काम में नुक्स निकाल देती, स्वादिष्ट खाने को खराब बताकर टाल देती। इतना ही नहीं, एक दिन अजीब घटना घटी, बहू का सिंगार, आलता भरा पैर, खनखनाती चूड़ियां, बुढ़िया को तनिक नहीं पटी, तो बुढ़िया चाची ने तुरंत अभी मैं जवान हूँ गाना लगाया और कहा कि साथ में गाऊंगी, और जोर से चिल्ला के कहा बहू आज मैं लाइव बॉय से नहीं लक से नहाऊंगी। बहू ने कहा यह सब क्यों सासू माँ? तो बुढ़िया ने कहा आज मैं तुझे बता दूंगी, मजा भी चखा दूंगी, अरे आज वैसे ही दिखूंगी जैसे 50 साल पहले दिख रही थी, और तेरे सीने पर सांप लौट जाएगा जब तुझे पता चलेगा कि यह सास भी कभी बहू थी। वह मुस्काई, बोली चलो देर से ही सही, अपनी पारी भी आई और झाड़ू चप्पल लेकर सास को मारने लगी, जवानी का भूत उतारने लगी, और तब बुढ़िया चिल्लाने लगी बचाओ हाय हाय, तब बहू ने ऐड चलाया, तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय। तब बहू बोली, जब आपको बहू बनना था तो मुझे भी तो सास बन जाना था और मुझे भी तो अपना फर्ज निभाना था। तब बुढ़िया चाची कहने लगी, अब मैं क्या कहूँ, मुझे माफ कर दे बहू, और सुन, अब हमें इस परंपरा को बदलना होगा, सास बहू के रिश्ते को दफना कर माँ बेटी के रास्ते पर चलना होगा, माँ बेटी के रास्ते पर चलना होगा। आजकल के सास और बहू के रिश्ते मुझे कुछ समझ में नहीं आते हैं, आजकल के गाने भी मुझे कुछ समझ में नहीं आते हैं। मैं खुद भी एक गीतकार हूँ, मैं क्या लिखता हूँ यह मेरे समझ में आता नहीं है, और बाजार में बहुत सारे गीतकार हैं, उनके भी गीत मुझे समझ में नहीं आते हैं। कुछ दिन पहले मैं टीवी पर एक गाना देख रहा था जिसमें माधुरी दीक्षित 3 फुट कूद कूद करके गाना गा रही थी, मेरा पिया घर आया ओ राम जी, मेरा पिया घर आया ओ राम जी। मैं माधुरी दीक्षित से कहना चाहता हूँ कि आपका पिया आपके घर नहीं आएगा तो क्या पड़ोस में जाएगा? इसमें राम जी को तकलीफ देने की क्या बात है? लेकिन आज मैं राम जी को तकलीफ देना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ, राम जी अगर इस पाश्चात्य युग की संस्कृत में आप आएंगे तो आपकी क्या दशा होगी? मेरी अगली कविता का शीर्षक है, राम जी अगर आप इस धरा पर आइएगा।
स्वागत है बारा जी, स्वागत।
राम जी अगर आप इस धरा पर आइएगा तो सब कुछ देखकर चौंक जाइएगा, यहाँ पर माते की जगह मदर, पिता की जगह डैड होंगे, आने पर देखिएगा कंडीशन बैड होंगे। आने पर देखिएगा कंडीशन बैड होंगे, आपको यहाँ हिंदी और संस्कृत के लिए लड़ना होगा, कॉन्वेंट स्कूल में जाके पढ़ना होगा, आप जब स्कूल से कॉलेज में जाओगे वहीं सीता मैया को भी पाओगे। देखोगे देखोगे सभ्यता शरीर से उतर गई होगी, टाइट जींस टी शर्ट बदन पर चढ़ गई होगी, आपके भ्राता लक्ष्मण आपके राइट हैंड कहाएंगे, आपके सुरक्षा के लिए पूरे इंतजाम करवाएंगे, आपकी सेना गैंग के रूप में होगी, आपकी छवि बैडमैन के रूप में होगी, आपके सर पर मुकुट की जगह कैप होगी, एक बात ध्यान रखना मॉडल सीता जरूर किडनैप होगी। एक बात ध्यान रखना मॉडल सीता जरूर किडनैप होगी, क्योंकि आज वक्त खुद ही ना संभल रहा है और घर घर में रावण पड़ रहा है। क्योंकि आज वक्त खुद ही ना संभल रहा है, घर घर में रावण पल रहा है, लेकिन यहाँ सदा पुण्य पलता रहा है, यह पाप की जमी नहीं है, और ऐसे रावणों को मारने के लिए राम की कमी नहीं। और रही राम जी की बात, तो विद्यार्थियों को राम जी दो ही बार याद आते हैं, एक परीक्षा से पहले एक परीक्षा के बाद। मैं महाराष्ट्र प्रदेश में रहता हूँ, इसलिए यहाँ की पीड़ा इस कविता में रखने जा रहा हूँ। इस कविता में विद्यार्थियों की पीड़ा है, जब एक विद्यार्थी फेल हो जाता है तो वह क्या कहता है, यही बात इस कविता में है, तो आपके सामने प्रस्तुत है, आई ग बाप रे बाप। खेल खेल भाई अपना खेल, खेल खेल में हो गए फेल, खेला कूदा मौज मनाया, घर वालों को उल्लू बनाया, बुक को कभी न हाथ लगाया, रिजल्ट देख फिर सिर चकराया, रोते रख कर सिर पर हाथ, सबके मुंह से निकले यही बात, आई ग बाप रे बाप, आई ग बाप रे बाप। मिस्टर छैला, मिस्टर छैला लैला के पीछे भागा भागा फिरता है, उसको पटाने के लिए क्या क्या नहीं वो करता है, कभी पहन कर आए जैकेट, कभी पहन कर आए लॉकेट, पर अंदर खाली है पॉकेट। पर अंदर खाली है पॉकेट, गिरा फिसल कर बाइक से, तब बेफोकड़ का जाम ट्रैफिक, हवलदार ने कॉलर पकड़ा, हथकड़ियों से हाथ जकड़ा, बोला निकाल जितना है रोकड़ा, वरना फोड़ता हूं तेरा थोबड़ा, नहीं निकला जब जेब से तब मारा घुसा मारा लात, लगा बोलने कान पकड़ कर, आई ग बाप रे बाप, आई ग बाप रे बाप। जहां तक बच्चे की बात आती है तो मुझे एक घटना याद आ रही है कि मेरे पड़ोस में एक कवि महोदय रहते हैं, वो बहुत दिनों तक बाहर टूर पे रहते हैं। एक दिन घर पर आए तो बीबी ने कहा, तुम्हें पता भी है कुछ, अपना मुन्ना चलने लगा है। बोले कितने दिन हुए? बोले 3 दिन। बोले छोड़ो जाने दो, बहुत दूर पहुंच गया होगा। ऐसे समझदार कवि को प्रणाम करता हूँ। आज हिंदुस्तान में बेकारी बढ़ रही है, मैं भी एक बेकार हूँ इसलिए कवि हूँ। आपको बताऊँ कि मेरे पास एक बार हरजीत सिंह करके एक व्यक्ति आए, बोले ओ पंडिता तू ये भविष्य कैसे क्या बता देता है यार। मैंने कहा है मेरी सेंडी है ना चुरकी, ये आकाशवाणी पकड़ती है। पंजाबी भाई ने कहा मेरे पास तो पूरी जटा है। मैंने कहा दाढ़ी अर्थिंग ले लेती है। लेकिन आज हमारे देश के युवकों की हालत बहुत गंभीर है। इस गंभीरता को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने कविता रखने जा रहा हूँ। कविता का शीर्षक है तकदीर बनाने का नुस्खा।
स्वागत है भाई बावरा जी, स्वागत है।
एक दिन मैं बस से उतरा, गर्ल्स कॉलेज के सामने से गुजरा, वहाँ भीड़ ही भीड़ लगी थी। वहाँ पर एक नौजवान चिल्ला रहा था, बड़ी बेतुकी राग सुना रहा था, कह रहा था ऐ लड़कियों अपने चप्पल उतारो और जितना मार सको मारो।
क्या बात है,
ऐ लड़कियों अपने चप्पल उतारो जितना मार सको मारो। मैं वहाँ ठहरा, उसकी हालात ने मेरे दिल पर चोट किया गहरा। मैं उसे खींच कर बाहर लाया, मैंने कहा भाई ये तू किस मंत्र का जाप कर रहा है या किसी पाप का पश्चाताप कर रहा है। उसने कहा भाई ऐसी कोई बात नहीं है, मैं BA फर्स्ट क्लास पास हूँ मगर लाचार और बेकार हूँ। मैंने कहा मगर आज यह चप्पल से मार खाने वाली बात समझ में नहीं आई, तो उसने बड़ी रोचकता से बताई। उसने कहा मैं एक दिन प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक अखबार में पढ़ा, उस अखबार में अजीब शेर पाया, वह शेर पाते ही यहाँ दौड़ा चला आया। मैंने कहा भाई उस शेर में ऐसा क्या लिखा था, कौन सा तकदीर बनाने का नुस्खा दिखा था। उसने कहा उस शेर में लिखा था कि दूध में चावल डालने से खीर बनती है और लड़कियों की चप्पल खाने से तकदीर बनती है। मुझे यह घटना सुनाते वक्त अत्यंत दुख हुआ कि आज हमारे देश के जवानों की ऐसी दशा है। देश के जवानों की ही नहीं, सीमा के जवानों की भी ऐसी ही दशा है। कुछ दिन पहले हम कारगिल के संकट से उभरे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितनी पाकिस्तान की जनसंख्या है उतने कैदी हमारे यहाँ 24 महीने जेलों में पड़े रहते हैं। आप फूलन देवी की अध्यक्षता में इन्हें छोड़ दीजिए, 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान विश्व के नक्शे से निपट जाएगा, ऐसा मैं आपको आश्वासन देता हूं। इस उत्तेजक घोष के बाद चलिए मैं आपको बच्चों के माहौल में ले चलता हूं। मुझे याद है कि एक बार मास्टर बच्चों को पढ़ा रहे थे, एक बच्चा बहुत मस्ती कर रहा था, तो मास्टर ने एक सवाल पूछ लिया कि बच्चों बताओ कि यथार्थ और भ्रम में क्या अंतर है। बच्चे ने कहा सर आप पढ़ा रहे हैं यह तो यथार्थ है, लेकिन हम भी पढ़ रहे हैं यह आपका भ्रम है। मैं आपके सामने जो अगली कविता रखने जा रहा हूँ यह एक शिक्षिका और विद्यार्थी के बीच के जो व्यवहार हैं उसको लेकर के है। आपके सामने प्रस्तुत है प्रसंग चीरहरण का।
स्वागत है।
एक दिन मास्टरनी ने महाभारत की ओर रुख मोड़ दिया और चीरहरण का प्रसंग छेड़ दिया। इतने में छुट्टी की घंटी दी सुनाई, मास्टरनी की बात पूरी ना हो पाई और बोली चीरहरण का मतलब घर से पूछ के आना और आकर कल मुझे बताना। मैं घर पर आते ही कहा बापू चीरहरण है क्या यह बताओ, मुझे चीरहरण का मतलब समझाओ। बापू ने कहा बेटा जब तेरे विद्यालय में महाभारत पढ़ाया गया तो चीरहरण का मतलब नहीं बताया गया। मैंने कहा बापू नहीं, घर से पूछ कर आने के लिए कहा गया, जल्दी बताओ इस रहस्य से पर्दा हटाओ। तब बापू ने मुझे समझाने का प्रयत्न किया कड़ा, मगर मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा। तब बापू ने कहा बेटा अब तुझे कल मास्टरनी ही बताएगी, बिना पूछे ही चीरहरण का मतलब समझाएगी। और जब दूसरे दिन विद्यालय गया तो सुनने में आया हर एक ने बताया कल रात मास्टरनी का तोड़ करके ताला किसी ने उनका ही चीरहरण कर डाला। और मैं समझ गया यह मेरे बापू की करतूत है। मेरे बापू का दिमाग कितना मजबूत है कि एक प्रश्न के लिए दुशासन का रोल सर पर ले लिया और मुझे समझाने के लिए मेरे मास्टरनी का ही चीरहरण कर दिया। मैं उसी समय मास्टरनी के घर पे गया और मास्टरनी से कहा आप ऐसा पाठ कभी ना पढ़ाइएगा, कभी चीरहरण का जिक्र ना उठाइएगा। और एक तरह से अच्छा ही हुआ कि आपने चीरहरण का ही पाठ पढ़ाया, कहीं रामायण की सीता हरण का प्रश्न ना उठाया, वरना मेरे बापू चीर हरण के बदले सीता हरण कर लाते और खाम खा रावण के रूप में जेल में नजर आते। मैंने एक बार अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी एक प्रश्न पूछता हूँ, आप जवाब बताएं। बोले पूछो। मैंने कहा मान लीजिए आप जंगल में जा रहे हैं और आपके सामने एक शेर आ जाए तो आप क्या करेंगे? गुरुजी ने कहा करेगा तो शेर, मैं क्या करूँगा। लेकिन एक बार मैं जंगल में जा रहा था और मुझे एक संत मिले, संत जो है शहर की तरफ आ रहे थे। मैंने कहा महाराज आपको शहर में क्या काम? तो संत ने कहा कि अब मैं राजनीतिक माहौल में जाना चाहता हूँ। और मैंने जब उनसे बहुत सारे सवाल किए, उसका जवाब किस किस तरीके से और कैसा कैसा मिला और मैंने उनसे क्या क्या सवाल किया, इसी सवालों की कड़ी में आपके सामने कविता रख रहा हूँ। कविता का शीर्षक है संत। कि एक संत चुनाव में हुए खड़े, मैंने कहा महाराज आप एक किस चक्कर में पड़े, राजनीति आप जैसे संतों के लिए नहीं है। महाराज ने कहा यह बात कौन से वेद पुराण ने कही है? महाराज ने कहा यह बात कौन से वेद पुराण ने कही है? मैंने कहा अच्छा आप राजनीति में क्यों जाना चाहते हैं, अपने पवित्र आत्मभूमि पर गंदा नाला क्यों बहाना चाहते हैं? तब संत ने कहा अब मैं अपना आध्यात्मिक कैरेक्टर बदलना चाहता हूँ और भोग विलास के रास्ते पर चलना चाहता हूँ। अब मैं अपना आध्यात्मिक कैरेक्टर बदलना चाहता हूँ, भोग विलास के रास्ते पर चलना चाहता हूँ। मैंने कहा अच्छा आप राजनीति में जाकर क्या करोगे, कौन सी नई विकास की शिला धरोगे? तब संत ने कहा पहले तो मैं लोगों की सेवा कर पेट पाला करूंगा और अपना धर्म भी संभाला करूंगा और इसके बाद मैं अपने जात पर आ जाऊंगा और जिस धर्म ने अब तक खिलाया है मुझे उस धर्म को ही खा जाऊंगा। आज ऐसी परिस्थिति से संत समाज गुजर रहा है, इसलिए विकलांगता का दौर हमारे हिंदुस्तान में आ गया है। कुछ दिन पहले मैं एक कविता की रचना की जो हमारे हिंदुस्तान के हर वर्ग पर लागू होती है, मैं वो कविता आपके सामने रख रहा हूँ। कविता का शीर्षक है विकलांगता। कुछ दिन पहले पोलियो डोज की योजना चलाई गई, खबर चारों तरफ दौड़ाई गई जिसमें कहा गया कि 5 साल के बच्चों को पोलियो डोज दिया जाएगा, उनके भविष्य को मजबूत और ठोस किया जाएगा। तो मेरे मन में कल्पना जगी, आज जो हमारी शक्ल सूरत है उससे लगता है हर एक को पोलियो डोज की जरूरत है। आज जो हमारी शक्ल सूरत है उससे लगता है हर एक को पोलियो डोज की जरूरत है। तो मैंने सरकार के पास एक खत लिखा, खत 100% सत लिखा। मैंने कहा माननीय महोदय कुछ ऐसी योजना चलाई जाए जिसमें हर एक को पोलियो की डोज दिलाई जाए, क्योंकि मानव और मानवता के बीच में एक लंबी फरलांग है। यहाँ कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से हर एक विकलांग है, हर एक विकलांग है, हर एक विकलांग है। अगली कविता सुनाने से पहले मैं आपके सामने एक घटना रखने जा रहा हूँ कि एक बार हाथी और चींटी में बातचीत होने लगी। चींटी ने हाथी से पूछा बता तेरी उम्र क्या है? हाथी ने कहा कि 3 साल। बोले 3 साल और इतनी मोटी हट्टी कट्ठी? बोली आई एम कॉम्प्लाइन बॉय। फिर उल्टा हाथी ने चींटी से पूछ लिया बता तेरी उम्र क्या है? बोली 5 साल। बोली 5 साल और इतनी दुबली इतनी पतली? बोली वो क्या है ना मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता ही नहीं चलता। और मेरी भी त्वचा से मेरी उम्र का पता नहीं चलता। अपन लाइफ बॉय लक्स दोनों यूज करते हैं टाइम टाइम पे। लेकिन अगली कविता जो मैं आपको रखने जा रहा हूँ आपके सामने, वह कविता धरती और स्वर्ग दोनों को अपने आप में समावेश किए हुए है, एक उद्देश्य भी उस कविता के अंदर छिपा हुआ है। तो आपके सामने प्रस्तुत है स्वर्ग और बॉलीवुड। इंद्रलोक से इंद्र ने फिल्म इंडस्ट्री के नाम एक खत लिखा, खत में पूरे मुसीबतों का ब्यौरा दिया और मुसीबतों को दूर करने के लिए अनुरोध किया। लिखा मेरे हालत पर ध्यान दीजिए, मेरे सवालों को हल करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। आगे लिखा मेरे सभा की चमक दमक खो गई है और स्वर्ग की सभी अप्सराएं बूढ़ी हो गई। मेरे सभा की चमक दमक हो गई है। स्वर्ग की सभी अप्सराएं बूढ़ी हो गई हैं, उनके घुंघरों में अब कोई जान नहीं है, उनके चेहरे पर खूबसूरत मुस्कान नहीं है। आजकल इंद्रलोक के सभी देवता योजना बना रहे हैं और इंद्रपुरी छोड़कर जाने के लिए धमका रहे हैं। इसलिए मैं आपसे विनंती करता हूं कि आप मेरे अनुरोध को ठुकरा कर दिल को ना ठेस दें। कृपया हमारे मनोरंजन के लिए ममता कुलकर्णी, उर्मिला मांतोड़कर और ऐश्वर्या राय को भेज दें। आप घबराएं मत, आपके सामने आने वाली हर मुसीबतों को हम हटा लेंगे और कुछ दिन के लिए राम गोपाल वर्मा और सलमान खान को पटा लेंगे। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात, हमारे यहाँ के गवैया बजवैया दोनों ढीले पड़ गए हैं, इनके तबले और तंबूरे दोनों के सुर उतर गए हैं, इसलिए हर टाइप के गानों से भरा एक रैक भेज दें और प्रसिद्ध ऑडियो कंपनी टिप्स के कुछ कैसेट और ट्रैक भेज दें। और एक पत्र साथ भेज रहा हूँ, यह आप सही जगह पर पहुँचा देना और यह पत्र हमने भेजा है ऐसा बता देना। उस पत्र में इंद्र जी ने लिखा, हमारे मतवालेपन की पहचान खो गई है, हमारे मतवालेपन की पहचान खो गई है और एक ही टाइप का अमृत पी पी करके हमारी जुबान बेजान हो गई है। इसलिए आप जल्द से जल्द एक्शन लीजिए और हमारे स्वाद के लिए पेप्सी और कोक भेज दीजिए। क्योंकि जो सोचो वो हो जाए, कोको कोला एंजॉय। क्योंकि जब निमुणा निमुणा पर ऐश्वर्या राय कमल लचकाएगी और पेप्सी और कोक की बोतल हाथ में आ जाएगी तो हर देवता का रंग निखर जाएगा और स्वर्ग का माहौल भी बदल जाएगा। तब फिल्म इंडस्ट्री वालों ने गुब्बारे के माध्यम से जवाब भेजा और उसमें लिखा, अगर यह खत सचमुच स्वर्ग से आपने भेजा है तो आप भी सुन लें, अगर स्वर्ग ही झूठे सौंदर्य पर लुट जाएगा तो लोगों का भगवान पे से विश्वास उठ जाएगा। तो लोगों का भगवान पे से विश्वास उठ जाएगा।